अयोध्या से हूँ, तो एक बार जो वहाँ की अयोध्या की संस्कृति है, जय सियाराम, इसलिए बोलना जरूरी है क्योंकि अयोध्या के संत महंत बोलते हैं कि आप जय सियाराम नहीं बोलते हैं तो मैं ओम शांति क्यों बोलूं। तो जो है ये भी चलना चाहिए, अनुभव सुनाने के लिए मुझे बोला गया है। अयोध्या के संतों महंतों का और इस वक्त लगभग अयोध्या के 75% संत महंत ब्रह्मा कुमारी इसको बहुत ही ऊंची दृष्टि से देखते हैं, सहयोग करते हैं पूरी तरह से। जहां भी बोल दे वहां वो तैयार रहते हैं, चाहे वो जगत गुरु हो, चाहे महामंडलेश्वर हो, नागा के हो, अयोध्या में चार पट्टी है, सारे लोग एक साथ सहयोग करते हैं। लेकिन जो अभी स्थिति है, ये स्थिति पहले नहीं थी, बहुत टिक्कल था। मुझे स्मृति है तब से जब 1991 में बाबरी मस्जिद की घटना हुई, चूंकि मेरा जन्म वही हुआ है, मैं अयोध्या में रहता हूं, उम्र ज्यादा नहीं था हमारा, लेकिन उस वक्त जो सेवाएं होती थी, घर में ज्ञान था 50 साल से पिताजी ज्ञान में, और वहां से साइकिल से अयोध्या माउंट आबू, अयोध्या से माउंट आबू आए हैं वो, मुझे लगता है 50 साल हो गया। तो कैसे रोड रहे होंगे, कैसे व्यवस्थाएं रहे होंगी, इतना नशा लोगों के पास। उस वक्त 200 किलोमीटर दूर तक कोई सेंटर नहीं था, कोई ऐसा नहीं, जिज्ञासु नहीं था, ओनली एक ही आत्मा थी, पिताजी हमारे। और साथ में यहाँ के रहने वाले सब जान ही रहे हैं, सतीश भाई साहब को जो सॉन्ग यहाँ लिखते हैं, प्रेम भाई साहब, ये सब साक्षी हैं, क्योंकि ये लोग वहां से 70 किलोमीटर दूर गांव था तो अयोध्या अपने घर पे आते थे। छोटी सी कुटिया थी पुआल का, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन क्या जुनून था सभी का सेवा का। अयोध्या में लोगों को चांस नहीं मिलता था, संत महंत लाइक नहीं करते थे, इतना नफरत था ब्रह्मा कुमारी से। हमने तो इनके समय का घटना सुना, लेकिन जब हम ज्ञान में आए, अयोध्या में मैं दिगम्बर खाना में मैंने रहना शुरू किया, परमहंस जी महाराज जी जो राम जन्मभूमि के अध्यक्ष रहे थे उस वक्त, अभी नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी हैं, तो जो सिवाय लोगों के द्वारा हुई, आधार तैयार हुआ, और कितनी इन लोगों ने गाली सहे प्रदर्शनी लगाने के लिए, किसी को वहां चांसेस नहीं था, बाबा के कैलेंडर फाड़े जाते थे और बेइज्जत करके वहां से भगाया जाता था। ये सारे सीन वहां रहे हैं। यहां तक कि जो कार्यक्रम कुछ ऐसे हुए थे उस वक्त, यदा कथा एक बहन एक मंच पर, जो सार्वजनिक मंच था वहां, उसको किसी ने ऑफर किया, लेकिन उस मंच पर नागा लोग भी बैठे थे और संत बैठे थे। जैसे वो सफेद वस्त्रधारी ब्रह्मा कुमारी उस मंच तक पहुंची हैं, नागा जी महाराज जी ने बेइज्जत करके डायरेक्ट मंच से ही भगाया था कि भगाओ इनको, यहां कहां बुला लिया, नास्तिक है ये लोग, जो है राम कृष्ण को नहीं मानते हैं, बहुत गलत दृष्टि लोग की। हम अयोध्या में रहते थे, घर में ज्ञान था, लेकिन मेरा समय नहीं आया था, इसलिए कोई लाइक नहीं था मुझे। ऐसा भी नहीं था कि विरोध था, बाकी ये लोग जाते थे तो मैं देखता था, ये भी स्मृति रहती थी कि अयोध्या के संतों से तो अच्छे ही हैं ये लोग, क्योंकि मैं उनके बीच रहा दिगंबर अखाड़ा में, तो मुझे पता था लोगों का एक्टिविटी, बड़े बड़े संतों का। यहां तक कि मेरे ये चलता था कि जैसे परमहंस जी महाराज जी बहुत नामी जो अध्यक्ष थे, उनके ऊपर भी 84 मुकदमे थे, लेकिन उनके जबान पे सरस्वती वास करती थी, ऐसा लोग कहते थे, लेकिन शब्द थोड़ा बिहारी थे। तो वो लोगों का उस वक्त मुझे एक सीन याद है कि मुझे लगता है 99 में एक बार दादर ज्योतिर्लिंगम का निकला पूरे भारत में, तो अयोध्या से गुजरना था वो पूरी रैली अपनी ब्रह्म कुमारी जी की। उसमें महाराज लोगों ने अपने अपने स्थान के किवाड़ बंद कर लिए थे, खिड़कियां, कि इनको देखना भी अपराध है। इतना ज्यादा जो है नफरत थी इन लोगों को। कमरे लेने के लिए, एक आश्रम के लिए अगर छोटा सा एक कमरा किराए पे लेने के लिए लोग जो है बहुत ही अपशब्द का उपयोग करके लोग भगाते थे। मैंने एक तो एक सीन देखा है, लेकिन मैंने बोला नहीं कहीं पर। जब ये एक झांकी का प्रोग्राम जानकी महल ट्रस्ट है वहां रखा गया, तो उसमें मीडिया वाले आए, बहने आए, भाई आए, तो मीडिया वालों ने भी वहां पर इतना भद्र शब्दों का प्रयोग किया। उस वक्त मैं था वहां पर, यानी इतना ज्यादा विवाद ये कई वर्ष चले हैं, कम नहीं चले हैं। समय बीता उस पे, हमारे सामने ही चलता था, और संत महंत के बीच में मैं रहता भी था, लेकिन मेरी छवि अलग थी, आश्रम से था नहीं, इसलिए हमारा जैसे दुनिया में है वैसे मैं रहता था। तो समय बीता और ये घटनाएं होती रही। हमारा दौर शुरू हुआ तो एक बार पूनम दीदी का क्लास चल रहा था, को उनका नवाबगंज पड़ता है नदी, सरयू नदी के उस पार, तो घर वालों ने कहा कि जाओ कुछ तो कम से कम ज्ञान ध्यान सुनो, प्रोग्राम हो रहा है, एक दिन ही चले जाओ। पता नहीं कहां समय हमारा लौटा था, बुद्धि यहां से फिर गई, मैं गाड़ी उठाया चला गया। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, इतिहास तो बड़ी लंबी है अयोध्या की। तो चूंकि मैं अयोध्या में रहता था और अयोध्या के जो माहौल है वो बहुत खराब है, कि वहां अगर कोई बड़ा होता है उस माहौल में तो उसके संस्कार अच्छे हो नहीं सकते। पहला तो दुष्ट बहुत होगा, झगड़ेलू बहुत होगा, सम्मान नहीं हो सकता एक दूसरे का, जैसे बस ऐसे ही वो सारे सिस्टम थे अपने पास। लेकिन बाबा ने क्या समझ के वहां रखा था मुझे खुद नहीं, लेकिन ज्ञान में आने के 4 साल बाद जब सब कुछ परिवर्तन हुआ तो मुझे एहसास हुआ जादूगर की जादूगरी, उसका प्यार, उसका सहयोग, कि वो कितनी दूर का सोचता है, कैसे काम कराता है। इन संतों के बीच में मैंने देखा है, जब बहने नहीं बैठ पाती थी, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी उनसे बात कर सके मठाधीशों के सामने, उनकी ऐसी नजरें तनती थी, उन तक पहुंचे कैसे, जो पाषाण का हृदय उनका हो गया था वो कैसे पिघले। बात ये थी वहां की, सुनना चाहते नहीं थे, मौका देते नहीं थे ये लोग। और अयोध्या की अगर पिघल गए तो समझो सब पिघल गए, क्योंकि सभी जानते हैं कि अयोध्या वाले बड़े वो हैं। लेकिन भगवान बाबा कमाल का है, मैं नहीं जानता था कि मेरे को उनके बीच में दूसरे वेष भाव में क्यों रखा है दुनिया भी। और चूंकि उन लोग के संस्कार तो आप लोग जानते हैं कि बहुत होता है, क्रूर होता है, तो मुझे लगता है कि उनसे मैं 2 हाथ आगे बढ़ गया था रहते रहते। 15-16 साल की उम्र से मैं वहां रहना शुरू किया, दिगंबर अखाड़ा, नाम ही अखाड़ा है, आप सोच लो नागाओं का स्थान, तो कैसे होंगे सब लोग, उनके बीच मैं भी रहता था। और कुछ बहुत सारी घटनाएं हुई और गलत संग में मैं था, लेकिन भगवान ने मुझे बचा के रखा था 2 चीज से, चरित्र से और खान पान से। दूसरा, मैं अयोध्या में रहने के बावजूद भी उनके बीच में कभी अपने इस जन्म में तो मैंने भक्ति भाव से किसी भी मंदिर में देवी देवताओं के सामने सर नहीं झुकाए हैं, भक्ति भाव से दिखाने के लिए कर दिया है। ये हमारी प्रक्रिया चलती रही है। तो मैं पूनम दीदी के क्लास में चला गया थोड़ा देर के लिए, 7 डेज का, इंदौर की पूनम दीदी है, तनाव के मुक्त के ऊपर उनकी क्लासेस चलते हैं। तो मैं वहां पहुंचा, लास्ट टाइम था, ठंडी का मौसम था, देखा वहां मुसलमान लड़के लड़कियां और भी माताएं बहने सब बुरका पहने भी वो भी बैठे थे। हमने कहा अरे क्या बताते हैं कि इसमें मुसलमान भी बैठे हैं, तनिक मैं आया हूं तो था नाप ही लेता हूं, सुन ही लेता हूं। मैंने पहली बार गौर से सुना वहां, चूंकि अयोध्या में रहने की वजह से बहुत सारे हमारे गतिविधियां भी अच्छे नहीं थे, मारपीट के, लड़ाई झगड़े के ही थे। उस वक्त अपनी उम्र 18-19 साल पहुंच चुका था और उस समय भी मेरे ऊपर मुकदमा था, मारपीट के 12 मुकदमे थे। बाईस तक पहुंचा। तो हाँ ये है, मैंने मार कभी खाया नहीं, मारा ही था। कभी बाबा ने ऐसा होने नहीं दिया है, चूंकि मैं 15 साल की उम्र से ही मैंने मार्शल आर्ट का इंस्ट्रक्टर रहा, मतलब सीखना शुरू किया, इंस्ट्रक्टर बन गया था। तो अहंकार भी बहुत था, सुधार की गुंजाइश नहीं थी, बहुत परेशान थे लोग। मैंने दीदी का जब क्लासेस सुना तनाव मुक्ति के ऊपर, तो मुझे जैसे लगता था दवा का काम कर रहा हो, क्योंकि गलत संग गलत हैबिट तो टेंशन भी तो देगा ना, वो कर्म अंदर से भी तो दर्द देगा, अंदर से आवाज भी उठती थी अपना जीवन किसी महान कार्य के लिए है, लेकिन क्या है पता नहीं है। कुछ घर में ही ज्ञान है, मैंने कभी सहयोग नहीं किया, सारी व्यवस्था मेरे पास थी, उन्हीं के बीच में रहता था, लेकिन ये आया ही नहीं कि इनको लोग महाराज लोग समय नहीं दे रहे ना वो कि मैं कुछ कर सकूं या करूं उनके लिए कहूं, या समय नहीं आया। लेकिन वहां से बाबा ने अपने इतिहास बदले, मैंने देखा सतीश भाई, प्रेम भाई आप लोग जानते हैं, बहुत संघर्ष किया इन लोगों ने, वहां की आधारशिला इन लोगों ने तैयार की है, गाली खा खा कर। और मुझे लगता है कि मैं आसानी से बाबा ने मुझे चलाया होगा, फिर मैं ज्ञान में वहां से निकला, लेकिन निकलते निकलते मुझे साल भर लग गया। नया नया एक सेंटर, छोटा सा कमरा मिल गया, तो मैं वहां जाना शुरू किया। कभी कभार जाता तो जो है घर वालों ने बताया था कि इसको मेरा लड़का जाएगा, पिताजी ने कहा तो इसको ज्ञान नहीं सुनाना, इसको जो है सिर्फ जो है खिलाना भोजन। तो मैं जब जाता था, दीदी ने कहा जब जाना कि अच्छा उनके लड़के हैं, तो कहा अच्छा है आ जाया करो अयोध्या में, यहीं घूमते हो खाने आ जाया करो। तो मैंने सोचा बड़ा अच्छा जुगाड़ है, तो यहीं घर रहता हूँ, खाने में फ्री मिलेगी। मैं जाना शुरू कर दिया। अब मुझे नहीं पता था उस खाने में बहुत कुछ है, बाबा के घर का खाना खाओ तो सबका पूरा बदल जाएगा, ये तो पता ही नहीं था। ओ ज्ञान तो सुनाया नहीं, लेकिन मैं खाना खाने में जाता था, उनको बताया था इसको पसंद क्या है, सिंपल चीजें वो बना के बड़े प्यार से खिलाती थी, बाकी कुछ नहीं आ जाया करो। तो ये बीता 6 महीना, तो 2-4-5 लोग हो गए सेंटर पे, बहुत अलग से गांव से, शहर के लोग नहीं थे, गांव के टच से लोग आने लगे। तो लोगों ने, दीदी ने थोड़ा सा भूमिका रचा मेरे लिए, क्योंकि वो जानती थी कि ये बहुत क्रोधी है और अहंकार कूट कूट के भरा है, पता था उनको कि इससे कुछ युक्तिश काम कराने हैं। तो उन्होंने क्या किया, इन लोगों ने प्लान बनाए थे, हाथ उठवाया कुछ वादा कराने के लिए, सभी हाथ उठाओ कुछ वादा कराना है। तो सभी ने तो उठा दिया, बाकी लोगों ने मैंने नहीं उठाया। तो कहा मुकेश भाई सबकी नजर मेरे पास थी, आप क्यों नहीं हाथ उठा रहे हैं। हमने कहा पहले वादा तो बताओ क्या करना है, पता नहीं क्या करवाओ आप लोग। तो कहा आप डर गए, तो मेरा अहंकार सही जगह काम कर गया। हमने कहा डर डर तो है ही नहीं है, बताओ क्या करना है, हाथ उठा दिया। सोच लिया था अब जो कहेंगे कर ही डालूंगा चाहे कुछ भी हो। तो उन्होंने क्या कहा दीदी ने कि मैं वादा कराती हूँ जितने लोग बैठे 1 साल लगातार मुरली कौन सुनने आएगा। फंस तो गया मैं, लेकिन संकल्प पक्का था, बाबा ने मदद की। मुझे याद है 365 दिन में एक दिन भी मिस नहीं हुआ है। और कर्फ्यू लगा, मुझे याद उसमें एक बार आतंकवादियों ने हमला किया था, आवाज तो पूरी दुनिया में गई थी, मैं अयोध्या में था, कर्फ्यू लगा अयोध्या में, अयोध्या की गली गली से वाकिफ था। कर्फ्यू में मैं जाके मुरली सुनने जाता था, अनेक रास्ते बारिश में भीग कर मैं गेट पे खड़े होकर ही मुरली सुनकर, लेकिन नागा तो संकल्प किया था, नागा नहीं तो नहीं। 365 दिन में वो कमाल की चमत्कार, कोई एक नियम पालन कर लो तो भगवान बड़ा बहुत बल भर देता है। फिर मैंने देखा पेशेंस, धैर्यता, शक्ति, एक अद्भुत जो है आत्मविश्वास अपने अंदर। वो दिन भी वो मुझे याद है, वो क्षण भी याद है। उसके बाद से वहीं से पता नहीं क्या हुआ कि अचानक बाबा ने मुझे अंडरग्राउंड कर दिया। अंदर में उत्पन्न हुआ क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं, और सोचने का भी टाइम नहीं, सिर्फ तपस्या। 3 साल लगातार मैंने अयोध्या छोड़ दिया। लोग सोच रहे थे, संत महंत लोग जो हमारे संपर्क के हित में थे, कि लगता है मुकेश मर गया। मैं एकदम रास्ता मैंने बदल लिया, उस रोड को बदल लिया जहां हमारे मित्र लोग रहते थे, क्योंकि मैं समझ गया ये तो पूरा पतन का रास्ता है, कहां मैं जहन्नुम में कूद पड़ा था तक। तो सिर्फ पढ़ाई करना, योग करना, बाबा ने बहुत सारे अनुभव कराए बहुत योग के। यो समझो कि उसने निद्रा जीत बना दिया था, जो कि मैं सोता भी बहुत था। अचानक कोई मेहनत नहीं करना पड़ा मुझे। 3 साल के बाद फिर से कदम मैंने उन्हीं संतों के बीच में डाला। मैं यहां योग का थोड़ा सा बताऊंगा कि इतने बड़े दिग्गज लोग कैसे धाराशाही हुए, कैसे क्या उन लोगों ने मदद करना शुरू किया। उसका सिर्फ एक कारण, बहुत अनुभव कराया है थोड़े से उम्र में बाबा ने, सच्चाई हो, निस्वार्थ सेवा हो, दिल की सेवा हो, दिल से। यह मैंने अपने आप को रीड किया, जरा सा भी नहीं था कि यह संत महान था, किसी काम के नहीं है, इनको पीछे क्या नहीं। बहुत प्रेम था मुझे उनसे और कोई स्वार्थ नहीं था, हमारे पास धन नहीं रहता था, गरीबी थी, लेकिन जो भी था संकल्प किया। फिर उसी दौरान एक चीज मैंने पढ़ा, बाबा का जो अपना प्रतिज्ञा है, नहीं भगवान की प्रतिज्ञा, 10 कमांड दिया उसने इतना आलिशान, उसको मैंने बड़े गौर से पढ़ा और दसों पे दृढ़ निश्चय कर लिया उसी वक्त की, ये 200 करूंगा। क्योंकि मुझे गांव के मोहल्ले रिश्तेदार भी लाइक नहीं करते थे, जीवन भी ऐसा था बहुत जो है दुष्ट वाली, तो उसमें लिखा था एक चीज, तो मेरा बन के देख हरेक को तेरा ना बना दो तो कहना। हमने कहा क्या ऐसा है, तो उसी पथ पर चल पड़े, कदम भी पीछे नहीं हुआ, बाबा ने कदम करने ही नहीं दिया, बढ़ाता रहा। 3 साल गुजर गया, 3 साल में मैंने देखा सबकी, जब कदम मैंने डाला वहां पर, जब आपके परिवर्तन को देखकर आपके हित मित्र रिश्तेदार आपको कहने लगे समझ लो वाकई परिवर्तन हुआ है। मैंने देखा सब कहते थे अपने आप, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता था। तो पहला अनुभव तो बहुत लंबे हैं, लेकिन कुछ गिने चुने अब संतों के अनुभव बताता हूं। पहले कदम बाबा ने हमारे जो रखवाए, वो भारत साधु समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत जनमेजय सरण जी महाराज और राम जन्मभूमि निर्माण न्यास अध्यक्ष महामल्लेश्वर भी है, रसिक पीठाधीश्वर, मतलब बहुत पदक, बहुत हाई क्वालिटी की पर्सनालिटी है वो। तो पहले बार हम उनके यहां ही कदम डाला जाके, मुझे ऐसा लगा जैसे कि जो है सब बना बनाया हुआ एकदम रखा हुआ है, जो नफरत करते थे उसमें एक चीज हुआ। जब मैं उनके स्थान पर पहुंचा, मुझे सीन याद है कि महाराज कुछ विक्षिप्त थे, कुछ उनका गायब हो गया था, तो वो ढूंढ रहे थे, 3 दिन से मिल नहीं रहा था। क्या था, उनका विदेश जाने का पासपोर्ट गायब हो गया था बहुत, और अपने चेलों को खड़ा करके डांट रहे थे बहुत जो है। तो मैं जब पहुंचा तो आदर्श शांति से बैठा था वहां बाबा की याद में, फिर उनको 3 दिन के बाद टच हुआ कि मेरा पासपोर्ट कहां पर है, वहां पर नहीं कहीं और छूट गया था। कहा अरे तो वहां है, फोन किया उन्होंने तुरंत, तो बताया कि फला जगह ये चीज है उसमें रखा, तो मिला। उसके बाद उन्होंने कहा अरे आप के आए मेरा बहुत बड़ा सर दर्द दूर हो गया। हमने कहा चलो बाबा ने कुछ काम यहाँ किया, ये खुश हुए, स्वागत किया बहुत अच्छा। मैंने उनको निमंत्रण दिया, पहला अयोध्या रामायण मेला होता है अयोध्या में 35-40 साल से, जिसमें मौका नहीं लगता था कभी प्रदर्शन लगाने के लिए, भगा देते थे लोग पिताजी को, तो साइकिल पे वैसी टांग के कहीं किनारे किनारे सेवा किया करते थे अयोध्या में। मैंने कहा कि उसमें महाराज जी आपको आना है, क्योंकि मेरे पहले के संपर्क भी काम आने लगे, बाबा ने वहां इसलिए रखा था, तो वो संपर्क काम में आने लगा और एक ही बार में वहां पंडाल का अपना लगना शुरू हुआ। हमने सोचा अभी इसका उद्घाटन इन्हीं से कराना है पंडाल का, तो महाराज जी को मैं रिक्वेस्ट किया बड़े प्यार से, तो वो तैयार हो गए। अब जब एक बड़ा आ गया तो चेले तो आ ही जाएंगे सब, उनके आने के बाद बहुत अच्छा कार्यक्रम, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम रखा। 1 साल के बाद 2012 में धर्म सम्मेलन था, वो हमने एक क्रिएटिव माइंड भगवान टच करना शुरू किया। हमने कहा अयोध्या में धर्म सम्मेलन होगा, पहले ही उस पे 700 लोग थे संत में और अनेक स्टेट से आए, और हमारे माउंट से पहली बार रामनाथ भाई धार्मिक बिंग से ये सब यहां से गए, तो उस मंच पर इतना अद्भुत कार्य हुआ। और वहां मैंने एक चीज विचार किया था कि सारे संतों को, जो जगदीश भाई ने गीता का किताब लिखा है ये मोटा वाला, सबको मैं यहां वितरण करूंगा। मैंने माउंट से मंगवा लिया था और सबको दे दिया, लास्ट में सबको बांटा। एक महीना के बाद मेरे पास फोन आया उज्जैन से। उज्जैन से जन्मेजय शरण जी गए हुए थे, उनका फोन आ रहे, मुकेश जी बड़ा गजब हुआ। हमने कहा क्या हुआ? कहा ये जो किताब हमने बांटा था उसमें तो बड़ा बवाल हो रहा है। अयोध्या से मेरे पास जो है बड़ी छावनी से फोन आया महाराज जी का कि ब्रह्मा कुमारियों को इकट्ठा करो, इनके सारे किताबों को इकट्ठा करा के बीच चौराहे पे दाह करवाएंगे, इनका विरोध करेंगे हम सब। हमने कहा क्या? कहा उसमें लिखा है कहीं किताब में आप लोगों ने कि श्री कृष्ण के द्वारा शराब का सेवन। तो मैं एक बार सोचा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है महाराज जी, क्या बात कर रहे हैं आप। तो कहा नहीं आप पढ़ो। हमने कहा ठीक है मुझे एक घंटा टाइम दो। किताब उठा के मैंने पढ़ा, शुरुआत के चैप्टर में चार पांच पन्ने के बाद ही लिखा था, लेकिन लिखने का ढंग अलग था वो और बताने का ढंग अलग था इनका। उसमें लिखा यही था कि शास्त्रों में किन्हीं परिस्थितियों में श्री कृष्ण के द्वारा भी शराब का सेवन दिखाया गया है, क्या ये सत्य है? इतनी हाई पर्सनालिटी की जो है जो सुप्रीम पावर उसको मानते हैं वो शराब का सेवन कर सकता है, उसके करेक्टर क्या ऐसे हो सकते हैं? मैंने पढ़ने के बाद फोन किया महाराज जी को, मैंने कहा ये महाराज जी ये बताएं उसमें जो लिखा है वो हमने नहीं लिखा है शराब पिया, वो आप लोगों ने लिखा है। हमने तो ये कहा है कि श्री कृष्ण शराब पी सकते हैं, इतनी दिव्य आत्मा जिसको परमात्मा की संज्ञा है। हमने कहा है जिस महाराज जी ने कहा है नंबर भेजिए मेरे पास और उनसे आप खुद या तो बात कर लीजिए। उन्होंने गारंटी है आगे पढ़ा ही नहीं है, वही दो चार लाइन पढ़ने के बाद वो आग बबूले हो गए हैं। क्या पढ़ा उन्होंने? कहे नहीं सही कह रहे हो, पढ़ा तो नहीं होगा। तो कहा आप क्या करें, विरोध तो कर रहा है। तो हमने कहा भले आप किस लिए हो, थामो ना उनको। तो कहा अच्छा ठीक है। तो एक महीने बाद पंडाल लगना था, ब्रह्मा कुमारी का भव्य पंडाल लगवाया। तो मैंने सोचा कि उस महाराज को तो बुलाना है, तो उद्घाटन मुझे करवाना था। तो महाराज जी से बोला हमने कहा उनको लेकर आओ और उनसे ये बोल देना चलिए ब्रह्मा कुमारी लोग इकट्ठा है, आपको जो बोलना है बोल लेना, जो डांटना है उनको वही डांटना, महाराज जी आप उनको ऐसे बोल के लाओ चले आएंगे। वो लेकर आए, पंडाल लगा बहुत अच्छा उस पर महाराज जी। हमने पूरी तैयारी की थी क्योंकि कमजोरी तो पता था, अहंकारी को चाहिए क्या सम्मान सीधा। तो बहनों को भाइयों को सबको सेट किया, फूलों की बढ़िया जगाए, क्या स्वागत हुआ। फर्स्ट क्लास मीडिया हमने बुलवा के रखे थे, बढ़िया कवरेज हुआ उनके बारे में, दो सब बड़ी महिमा हुई। वो भूल गए सारी चीजें वहां पे और उसके बाद उन्हें के द्वारा कैसे से उद्घाटन कराया और बहुत पहुंचे महंत थे वो जो है बड़ी छावनी के। फिर नंबर आया राम लखन नागा महाराज जी वहां के हैं, जिन्होंने स्वयं उन बहनों को बेइज्जत किया था जहां की मैं बात कर रहा हूं, स्टेज से भगाया था। उन महाराज जी का नंबर आया, वो महाराज जी ऐसा सरेंडर हो, क्योंकि उनके जो लोग बड़े थे जब ये लोग आ गए तो वो क्यों ना आए। उन्होंने स्वयं फिर शुरू किया पंडाल का लगवाना और सारी प्रक्रियाएं सब नाधा अयोध्या के। मैं और उसके बाद विरोध चल रहा था, ऐसा नहीं है विरोध नहीं चल रहा था, पर जो हमारे नित गोपाल दास जी महाराज जी हैं उन्होंने बड़ा विरोध, अभी तक उनके अंदर विरोध है। अयोध्या में रामायण मेला होता है जिसमें आप लोगों ने दीवा भी जला हुआ है, तो योगी जी आए थे उस पर स्पीच कर रहे थे, शायद आप लोगों ने देखा होगा, वो मंच है, वही बहुत बड़ा मंच है। तो इन लोगों ने कहा इस मंच पर कभी भी अपने इस मेले में ब्रह्मा कुमारियों को नहीं हलने दूंगा। तो मैंने भी ठान लिया है अब तो उतारना ही है बाबा, कैसे भी हो। और चांस आया मंच के लिए तो असम नेशनल मंडेला जी ने शरीर छोड़ा था, जो कार्यक्रम वहां होते हैं पब्लिक के लिए वो सारे कार्यक्रम स्थगित हो गए शांति के, उसमें पूरे भारत बंद थी, विदेश में भी था उनके वजह से, तो उन कार्यक्रम ध्वस्त होने लगा। सभी संतों में हड़बड़े मच गई कि पब्लिक तो गायब हो जाएगी, तीन दिन का है मैदान तो आज ही खाली हो जाएगा, तो कुछ तो करना है। तो मीटिंग बैठी, तो मीटिंग में नागा जी महाराज जी ने जो जितने मठाधीश थे उनकी मीटिंग थी, हमारा भी नाम लिखा दिया, मैं भी शामिल हो गया मीटिंग में। क्या किया जाए, कार्यक्रम कहां से मिले? तो लास्ट में मैंने बोला कि महाराज जी क्या मैं उसमें कार्यक्रम पेश कर सकता हूं, खाली ना जाए दिन अच्छा रहेगा, क्या करेंगे आप? तो मैंने कहा मैं हनुमान जी के गेटअप में एक बालिका बच्ची है उसका अद्भुत नृत्य कराऊंगा। बच्ची का तो कार्यक्रम हो सकता है ना, शांति का संदेश नहीं लेकिन हनुमान चालीसा पर नृत्य हो सकता है ना? कहा ये तो हो सकता है। तो हमने कहा ठीक है, उसमें ने और एक रास्ता बाबा ने टच कर दिया, मैंने कहा कि मंच तो खाली रहेगा, बहुत बड़ा मंच है महाराज जी, अगर मेरी विचार है आप लोग मंच पर लास्ट में खड़े हो जाइए और मेरी ब्रह्मा कुमारी बहनें आप पर फूलों की बारिश भी करेंगी और एक अद्भुत दृश्य होगा भगवा रंग और व्हाइट रंग का, आप उसका इमेजिन करिए कितना सुंदर है माइंड में उनके भरा, तो वो लोग चित्र बनाने वहां मजा तो आएगा, मीडिया सारी लगी रहेगी। तो कहा ठीक है, तो हमने कहा बस काम बन गया। मैंने बहनों को इकट्ठा किया, लेकिन टीचर बहनों को मैंने नहीं खड़ा किया कि इनके टीचर बहनों के द्वारा इनके पर मैं फूल की बारिश तो नहीं कराऊंगा। हाँ, जो उनकी सहयोगी बहनें हैं उनके द्वारा कराऊंगा, लेकिन अपनी बहनों को उनके समकक्ष खड़ा करूंगा, क्योंकि इनसे बढ़कर तो नहीं है, ये हम जान लें। बस ये तो मैं नहीं बताया था, लेकिन जब महाराज जी लोग खड़े हुए तो बहनों को खड़ा कर दिया उनके बगल, वो सब सन्नाटा थे, कुछ नहीं बोले, उनको मजा भी आ रहा था क्योंकि बहुत भीड़ थी, सफेद रंग और गीत चल रहे थे और नृत्य चल रहा था, लाइव चल रही थी वो प्रोग्राम। उसके बाद फिर बहनों ने फूलों की बारिश की, उनका वो प्रोग्राम इतना अद्भुत हुआ, अब वहां से मंच का उनका जो संकल्प था वो टूटा, दूसरा चीज शुरू हुआ। फिर अयोध्या में होता है गंगा दशहरा की आरती, बड़ी भव्य होती है, जहां भी दीवा जलाने और योगी जी आरती उतारते वही जगह पे, वो हर साल चलता है, प्रतिदिन चलता है, लेकिन साल में एक दिन गंगा दशहरा होता है जिसमें 20,000 से 25,000 लोग की भीड़ होती है, अयोध्या के चारों पट्टी के महंत इकट्ठा होते हैं उसमें, एक से एक दिग्गज खड़े होते हैं। तो अयोध्या में हमारे जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी हैं और गिरीश त्रिपाठी जी महाराज जी हैं, सब बहुत सिद्ध लोग हैं वहां के, बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं। मैं बाइक से जा रहा था तो मैंने देखा फोटो लगा हुआ है बहुत भव्य चेहरा किसी संत का, मैं रुक गया देखते हुए, आकर्षण हुआ मुझे कि यह कौन है, ये इनसे तो मैं मिला ही नहीं हूं। तो मैं घूमते हुए मेरे पास कॉल आया जगत गुरु जी का, उन्होंने बुलाया अपने स्थान पर, कहा आइए मुकेश जी, मैं किसी से मुलाकात कराता हूं आपको। मैं पहुंचा तो एक से एक महारथी बैठे थे, मतलब ये जो संतों की महारथी, ये सब बैठे हुए थे। पहुंचा मैं वहां तो उसमें लखनऊ से ऑपरेट होती है वो जो आरती होती है गंगा सरयू माँ की, तो उन्होंने कहा परिचय कराया उन्हीं महाराज जी से जिनकी मैंने फोटो देखा, वो आए उन्हीं से परिचय कराया हमारा कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम से मुकेश जी हैं, हमारे लोग के बीच में रहे हैं और अभी ये ब्रह्मा कुमारी में चले गए हैं, उन्होंने परिचय ऐसे मेरा कराया। हमने कहा मैं पहले ही से वही था, सिर्फ आप लोग को महाराज जी पता नहीं था, मेरा रूप रंग भेष अलग था, अब मैं उस भेष में आपके साथ हूँ। कहा सही बताओ आप ब्रह्मा कुमारी वाले करते क्या हो, सबके बीच में पूछा। तो हमने कहा ठीक है, मुझे चांस मिला सुनाने का तो मैंने यहाँ की मर्यादाएं बताई अपनी। कहा ब्रह्मा कुमारियां जो बनती हैं ये सब कुमारियां क्यों उसमें शामिल होती, ऐसे जो है सब शामिल हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ के जो अपने समर्पण का कुछ विधि बताया प्योरिटी के ऊपर, 5 मिनट उनके सामने बोला कि हमारे जो फाउंडेशन है वो प्योरिटी ही है उसकी परिभाषा। वो लोग की बिल्कुल आंखें फुली रह गई, अरे क्या आप बात कर रहे हैं। हमने कहा जी हाँ, आप जितने ब्रह्मा कुमारियों को देखते हैं वो सब ब्रह्माचारिणियां हैं, और ऐसे नहीं है, बहुत नियम और धारणा से है, जो जल्दी टूटता नहीं किसी का, लेकिन टूट जाता भी है, अभ्यास कर रहे हैं, मैं ऐसे नहीं जो है ठोक सकता डायरेक्ट। तो उन्होंने कहा कि लेकिन वो सब रेसिंग में है, अब बहुत आगे निकल चुके हैं, वो पवित्र है, पवित्रता को उन्होंने वरण किया है, और यहाँ जो भी होते हैं ये पहला हमारा फाउंडेशन है, खान पान से लेकर सब कुछ है। तो महाराज जी ने कहा कि मुकेश जी मेरी एक इच्छा है। हमने कहा क्या, मैं चाहता हूँ इस बार अयोध्या की जो सरयू की आरती हो, गंगा सरयू माई भी कवारी हैं, पवित्र हैं, तो उनकी आरती भी इन ब्रह्मा कुमारियां पवित्र बहनों के द्वारा कराया जाए। तो मैंने कहा बहुत सही, क्योंकि वो बहुत बड़ा मंच था। तो बाबा को मैंने थैंक्स मन में बोला, फिर हमने कहा मेरा शर्त है महाराज जी। कहा क्या, हमने कहा मेरी मैं 108 ब्रह्मा कुमारी बहनों को उतारूंगा आपके बीच में, लेकिन जब मेरी बहनें गंगा नदी के सामने त्रास कर लाइन से, तो आप संतों के द्वारा फूलों से स्वागत करना, उनकी पवित्र है उनकी आपको करना है स्वागत। वो तैयार हो गए। कहा ठीक है। फिर हमने कहा मंच आपका स्टेज चाहिए 10 मिनट बोलने के लिए, मुझे माइक भी चाहिए वहां। कहीं ये तो नहीं हो सकता भाई। तो हमने कहा तो आना भी नहीं हो सकता है। तो कहा मैं अच्छा और बात करता हूँ लखनऊ, वहीं से उन्होंने मिलाया। लखनऊ से बाबा ने भेजा तो उन सबका बदल दिया, मिल गया कि ठीक है ओके। बहने इकट्ठा हुई, 108 ब्रह्मा कुमारी आई और 20,000 की टीम रही होगी, चारों स्थान के पट्टी के सब महंत इकट्ठा हुए। लाइन से जब शाम के टाइम लिया दीवा, सब 108 बहने सफेद में पहन के खड़ी हुई, तो एक अद्भुत नजारा आ रहा था, चमक रहे थे जैसे फरिश्ते। लोग भी देख रहे थे हैदंग होकर कि अरे कहां से आ गए इतने सफेद हंस की तरह। जब दीवा शुरू हुआ और मंत्र उच्चारण के साथ, तो जो मेन पुजारी है उनके पास हाथ में जो दीवा होते 108 बत्ती के थे, मैं तो उनके साथ था। उन्होंने मुझसे कहा कि मुकेश जी, दिल हो रहा है कि आज मैं इस सरयू माँ के साथ साथ इन देवियों की मैं आरती उतारूं। हमने कहा महाराज जी कौन रोक रहा है? कहा बड़े बड़े यहाँ सब बैठे हैं। हमने कहा ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि आरती आप तो डायरेक्ट नहीं उतारते हो, घूम के भी तो उतारते हो ना, तो घूम जाओ आप आगे हो उतार लेना। कहा क्या बात, कहा आपको रियल बताएं, वो लाइव थी महाराज जी, उतारते उतारते घूम कर सबकी आरती उतार रहे थे। ये अयोध्या के इतिहास में पहला जो है मोड़ था। उसके बाद मंच मिला बोलने के लिए, ये दूसरा बहुत बड़ा खाता खुल गया वहां से। तो जब हमारी सुरंदर दीदी बनारस जोन की, वो उनको बुलवाया था, उनको खड़ा कर दिया बोलने के लिए। तो 15 मिनट से 25 मिनट बाबा ने क्या करवा दिया कि 20,000 लोग डीप साइलेंस थे, जैसे अपने पांडव बाबा आते थे डायमंड हॉल में, तो वो शांति थी कि सभी संत सुनते रहे। उसके बाद इतनी तालियां हुई, इतना लोग प्रसन्न हुए, तो धर्म गुरु पेड़ा महाराज जी हैं वहां, नर्मदाचार्य पेड़ा महाराज जी, उन्होंने मुझसे कहा जब खत्म हो गया लास्ट में, कहा मुकेश जी आज तो अयोध्या के संतों के चेहरे पे आपने थप्पड़ मरवा दिया है। हमने कहा आपने आज वो कहलवा लिया है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी के थ्योरी, उनके नियम, वो क्या करते हैं, क्या विधि विधान है, आज तक किसी को पता ही नहीं था। और जो थोड़ा मोड़ा आपका कार्यक्रम शुरू भी होता था, तो आप लोग खाली उद्घाटन कराते थे, कुछ सुनाते तो थे ही नहीं। हमने कहा सुनने वाले तो थे ही नहीं, सुनाओ कहां सुनाया जाए इन लोग को, तो अब चांस लग गया है। तो बाबा ने देखो कैसे वहां से रास्ते खुले। उसके बाद उषा दीदी, शीलू दीदी और सूरज भाई की क्लास शुरू करवाई, वहां प्रोग्राम लगवाया। शीलू दीदी का प्रोग्राम 2018 में लगा, 6 दिसंबर को अयोध्या का जो है मुसलमानों का काला दिवस होता है, और उसी पर बाबरी मस्जिद टूटा था। तो आज भी, अब तो योगी मोदी जी के आने से अब तो पूरा वो रामराज हो गया, इसलिए कर्फ्यू नहीं लगता ना कोई ऐसा चीजें होती है, उस वक्त था। और 9 तारीख को ही शीलू दीदी का प्रोग्राम रखा था, बीच अयोध्या में एक ऐतिहासिक मंच था वो, और वो ऑपरेट कौन किया उसको, पूरी जो है समर्थन किया था जगत गुरु महाराज राम दिनेशाचार्य जी महाराज जी, और जानकी घाट के बड़े महाराज जी, और गिरीश त्रिपाठी जी महाराज जी, जो बहुत ये लोग, इनकी पूजा होती है गांव गांव में। जब ये सारी प्लानिंग हो गई, हमने सारे अनर बैनर बनवा लिए, उसके बाद लगवा दिया, मीडिया में भी बता दिया, तो यहां से आवाज गई, अरे बहुत लफड़ा है वहां, टीवी पे आ रहा है, उसमें एक महाराज परमहंस जी हैं, उनकी टीवी बराबर आती है, जो मुसलमान के लिए बहुत चैलेंज शब्दों का यूज करते हैं। उन्होंने कहा, उसी दिन कहा था कि अगर कुछ नियम रख दिया था कि ये 5 किलोमीटर एरिया में से अगर अंडा और ये सब बिकेगा तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। अरे हमने कहा उसी दिन आत्मदाह करेगा जिस दिन प्रोग्राम है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सब लगा दिया, टीवी पे तो आ रहा था खूब, तो यहां तक आवाज पहुंची। तो यहां से ये हुआ, दीदी ने कहा नहीं मुकेश भाई, इसीलिए दीदी ने कहा कि कैंसिल करो, बाद में कर लिया जाएगा। अब मैंने भी ठान लिया था प्रोग्राम तो समस्या के बीच में ही कराना है, तभी तो लोग देखेंगे भाई, यही प्रोग्राम होगा, नजर जाएगी और प्रोग्राम होना है, बाबा बैठा है। अब कैसे समझाऊं? फिर महाराज जी से हमने कहा, तो जन्मेजय शरण जी से मैंने कहा, महाराज जी ये महाराज जी तो कह रहे हैं आत्महत्या करेंगे आपके पड़ोसी, उसी दिन प्रोग्राम तो चौपट हो जाएगा। तो मुस्कुराए, बोलने का अच्छा बताता हूं। फिर मैंने फोन किया, फिर यहां से कैंसिल, तो दीदी ने कहा आप करुणा भाई से बात करो, मुकेश भाई अयोध्या के लिए सारी मीडिया आ जाएगी, पूछेगी उसी दिन जो है ऐसा टाइम पे प्रोग्राम है कि आप राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के बारे में ब्रह्मा कुमारियों का क्या वो है विचार है, तो उस पर क्या जवाब दूंगी, वहां के लिए एक शब्द भी गया तो बड़ा उल्टा जाएगा। हमने कहा नहीं, मीडिया को मैंने सेट किया है, हमारे हित मित्र लोग ही हैं जितने हैं, वो नहीं पूछेंगे, जो कहूंगा वही पूछेंगे। कहा फिर भी, तो हमने कहा काम तो ऐसे बनेगा नहीं। मैं गया जगत गुरु महाराज जी के पास, बैठा, उनको सारी बात बताई। मैंने कहा महाराज जी वहां से नहीं तैयार हो रही है दीदी। कहा एक काम करो, फोन मिलाओ, माउंट आबू बताया। महाराज जी ने कहा, हमने तुरंत शिल्प दीदी को फोन मिला दिया। दीदी ने कहा अरे मुकेश भाई कैंसिल। अरे मैंने कहा दीदी किसी से बात करना है, जगत गुरु महाराज। अरे वहीं बैठे हो। हमने कहा हाँ, दे दिया। तो महाराज जी ने कहा कि आप मेरी भी दीदी हैं, अयोध्या में लड़ाना भिड़ाना और शांत कराना ये सारा काम मेरा ही है। जगत गुरु जी ने कहा इसलिए ये कार्यक्रम जो हो रहा है ये आपका साथ मेरा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में कहीं चिड़िया भी अपनी पर नहीं मार सकती है, आप आइए, स्वागत है। और करुणा भाई साहब ने भी कह दिया जाओ। फिर दीदी खुश हो गए, बस मैं आ रही हूँ। आपको बताएं इतनी बीच में बहुत सारी समस्या आई, लेकिन उन सारी समस्याओं को मेरे द्वारा नहीं, महंतों के द्वारा ही महाराज जी ने, बाबा ने सारे काम करवा डाले। और उसमें एक बहुत बड़ी विघ्न आई, क्योंकि जैसे कल हमारे प्रोग्राम है, दीदी आने वाली है, तो अयोध्या में भंडारा होता है हनुमानगढ़ी पर, जिसमें अयोध्या के चारों पट्टी के सारे महंत को जाता है और वहां सबको दक्षिणा मिलती है। तो हमारे जो प्रोग्राम थे वो दिन में 10 बजे से थे, और वहां पर उन लोग का जो भंडारा था वो 10 बजे से ही था। तो नागा जी ने और सभी महाराज ने कहा मुकेश जी आपका प्रोग्राम तो फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि ये एक भी छोड़ेंगे नहीं, सारे लोग जाएंगे, क्योंकि वहां दक्षिणा मिलेगा, आप तो कुछ दोगे नहीं। तो हमने कहा हाँ, हम तो देंगे नहीं धन, यहां से हमारे यहाँ नियम तो नहीं है ये। तो कहा सोच लो, अभी मीटिंग होगी हनुमानगढ़ी पर, एक काम करो आप वहां पहुंच जाओ, उस मीटिंग में सारे संत रहेंगे अयोध्या के, और नहीं तो कल तो फ्लॉप हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने ऐसी बात कहके मुझे तो यहाँ समझ लीजिए एक हथौड़ा मार दिया, इतना लंबा कल ही प्रोग्राम है, इतनी बड़ी तैयारी थी वो। मैंने बाबा से कहा मन ही मन कि, हमने कहा महाराज जी से कहा कि प्रोग्राम भंडारा तो आगे पीछे भी हो सकता है, कहा इतिहास गवाह है, आज तक कभी नहीं हुआ है ये और ना होगा। तो मैंने मन में सोचा और कह भी दिया हम नागा जी से, हमने कहा जो इतिहास में कभी नहीं हुआ हो वो आज होगा। और किसके दम पे, एक बल एक भरोसा। बाबा को बोला, हमने कहा बदल दो इनका बाबा इतिहास आज। तो हम गए वहां बैठे, जैसे हम गए बैठे तो सब महंत बैठे थे, ओम शांति, जय श्री आराम, बहुत अच्छा हुआ। तो नागा जी और पेड़ा महाराज जो धर्म गुरु थे, उन्होंने मुझे इशारा किया, गए उनके पास बैठे, कहा अरे मुकेश भाई, हमने कहा जी, कहा आपने सही कहा था इतिहास बदल गया है। हमने कहा क्या हुआ, कहा ये जो प्रोग्राम 10 बजे था भंडारे का, और आज फला वहां से मंत्री जी आ रहे हैं, वो शाम को 8 बजे रखा। आपको बताएं, मैंने बाबा को थैंक्स किया। हमने कहा, और दूसरे दिन सारे संत झांसी से कोटा से बड़े बड़े दिग्गज महंत सब पहुंचे वहां पे, और सभी ने सिर्फ ब्रह्मा कुमारी के बारे में वो स्पीच किया है। मेरे साथ, मेरे पास सारी वीडियो और क्लिप है, कि आप सोच नहीं सकते कि कैसे हवा भगवान ने बदल दिए है। शीलू दीदी को चांदी का ताज पोसी, जो है जगत गुरु महाराज जी, उन सब ने मिलके महंत लोग ताज पहनाएंगे, सवाल नहीं उठता है। और वहां जाकर जब दीदी बैठी है, शीलू दीदी के वो वाइब्रेशन, 20 मिनट का योग कराया था उन्होंने, वो योग का जो वाइब्रेशन था, दीदी के आने के बाद हमारे पास जो है पीठाधीश्वर महाराज जी, वशिष्ठ पीठाधीश्वर गिरीशपति महाराज जी पहुंचे। उन्होंने कहा मुझे वो योग जानना है जो उन्होंने सिखाया था। हमने कहा उसके लिए आपको पहले ज्ञान सुनना पड़ेगा, अब फिर ही योग होगा, क्योंकि उनको बताना चाहिए सारी चीजें। सब रेडी हो गए, तैयार हो गए। मेरी मैंने देखा है संतों महंतों से मेरी जब टॉक हुई, वो लोग कहते थे एक सब्जेक्ट पे उन्होंने बहुत अच्छा बात किया, कहा आप लोग शिव शंकर में अंतर बताते हो, ये अपनी अपनी थ्योरी है मुकेश जी। हमने कहा थ्योरी नहीं, अलग तो आपने ही किया है, ज्ञान कभी नहीं सुनाया, लेकिन ऐसे व्यवहारिक बैठ कर बातें होती थी। तो वो लोग नतमस्तक सुनते रहे और जानते रहे, और उनको ये भी बता दिया कि भगवान एक टॉपिक पर वो लोग उखड़ गए थे सिर्फ, बहुत अच्छी तरह से जर्रे जर्रे कड़कड़ में भगवान है कि नहीं है, लेकिन उस पर मेरे से थोड़ा हो गया उनका, जगत गुरु जी का, कि मुकेश जी आप कलंक लगा रहे हो। मैंने कहा महाराज जी जरा गौर से और ध्यान से सुनिए और समझिए उसको पूरी थ्योरी, कलंक नहीं, मैं कलंक धो रहा हूं, ठीक है, आप टाइम देंगे, आप बात कर सकते हैं, आइए मंच पर बैठ के बात करूंगा आपसे, मैं तैयार हूं, और आप अपने साथ टीम ले आइए, मैं सबके साथ बैठने के लिए तैयार बैठा हूं। तो मेरी उनकी बात भी हुई, मंच पर नहीं हुई। फिर वो लोग क्या ना, सत्य जान कर भी सत्य स्वीकार करना जल्दी तैयार नहीं होना चाहते हैं, लेकिन अब स्वीकार कर लिया उन लोगों ने। तो ऐसे अनेक अनुभव। भैया टाइम हमारा क्या था, यही था पूरा, ठीक है। तो उसके बाद सूरज भाई जी गए यहां से, उन संतों महंतों ने कितना स्वागत किया है स्थानों पे अपने घुमा घुमा कर। अब यहां तक कि जैसे आप कभी अयोध्या आएंगे ना, आपको देखना कितना सम्मान से। दस लोग के एक अनुभव और बता देता हूं, बहुत आलीशान है। झांसी के बड़े महंत हैं, वो महामलेश्वर भी हैं, वैदेही वल्लभ शरण महाराज जी, बहुत प्रतिष्ठित है वो। उनका उभू माफिया नाम से जाने भी जाते हैं, और अयोध्या स्वर्ग द्वार पूरी एरिया उन्हीं की है। मंत्री मंत्री सब उनका जाके पैर छूते हैं। उनसे मेरे संपर्क नहीं थे, तो हमारे अयोध्या में एक पहलवान महाराज थे शंकर दास जी, उन्होंने उनसे मेरे कुछ संपर्क थे। तो उनको मैंने कहा महाराज जी आपको माउंट आबू चलना है, तो उन्होंने कहा ठीक है चलूंगा। ये एक महाराज जी हैं, हमारे गुरु जी हैं मुकेश जी, इनको जरा ले चलो इनको भी। हमने कहा कौन है, नंबर दिया, कहा इसी वक्त मिलाओ। मैंने मिलाया महाराज जी को फोन, तो अयोध्या इत्तेफाक से आए थे वो। तो मैंने कहा महाराज जी मैं आपसे मिलना चाहता हूं, एक बार आपके दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो कहा आप कौन, बताया। हमने कहा अच्छा ठीक है आप कल आ जाओ। मैं पहुंचा वहां स्थान पे, सब संत बैठे थे पहली बार। तो उन्होंने कहा, हमने कहा हम ब्रह्मा कुमारी से हैं और हम चाहते हैं हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं आप उसमें महाराज जी चलिए, माउंट आबू चलना है उसके लिए मैं आया हूँ आपके लिए, धर्म सम्मेलन होता है और कुछ जानकारी आपको ब्रह्मा कुमारी के बारे में भी और आपके बारे में भी जानकारी होगी, आदान प्रदान होगा। तो कहा आप मुझे ब्रह्मा कुमारी के बारे में क्या बताएंगे, मैं आपको बताता हूँ वो बोले। तो हमने कहा ये क्या बताएंगे, जरा मैं भी सुन लूं। कहा झांसी में मैं मेला करता हूं अपना, और मेरे ये जो है हर साल होते हैं, और सैकड़ों कन्याओं की मैं अपनी तरफ से शादी कराता हूं गरीबों की, और पूरी खर्चा उनका होता है, कम से कम 4-5 लाख लोग की भीड़ होती है उस मेले में, ये उसके लीडर हैं। कहा आपके ब्रह्मा कुमारी आश्रम से, मैंने आज बताया कि 5-6 साल पहले जो हमारे मेले थे उसमें आपकी ब्रह्मा कुमारी बहने आई, भाई लोग आए हमसे परमिशन लेने के लिए मेले में, कुछ आप लोग का जो लगता है पंडाल वंडाल वो लगाने के लिए। तो मैंने पंडाल आदेश दे दिया, तो मेरे जो और शिष्य हैं चेले लोग आए जो देखते हैं, उन्होंने आके कहा महाराज जी इनको कहा दे दिया, ये लोग महानास्तिक लोग हैं, ब्रह्मा कुमारी जी वाले को अपने पंडाल अपने मेले में इनको मत देना, इनको हटाओ। तो महाराज जी ने कहा अब तो मैंने कह दिया है, मुंह से निकल गया है, तो अब वो लगाएंगे, अब देखता हूं क्या लगाते हैं लोग। तो लगा पंडाल, ये महाराज की जुबानी बता रहा हूं, कहा लगा पंडाल, उसके बाद मैं गया वहां देखने। तो मैंने देखा वाह कमाल है। प्रोग्राम होने के बाद मैंने अपने शिष्य को बोला, हमने कहा अरे मूर्खों तुम जिसको कह रहे थे हटाने के लिए, मेरे पूरे मेले की शान थी वो लोग, इतना अच्छा देवी देवताओं की फोटो लगी हुई थी, उतना अच्छा हम लोग नहीं लग सकते। तो हमने कहा उसके बाद आपने लगवाया, कहा आगे सुनो, सब बैठे सुन रहे हैं। कहा मैंने अपना एक शिष्य भेजा गुप्त में आपके आश्रम में, और जब मेरा शिष्य की जाओ पता लगाओ ये लोग क्या करते हैं ब्रह्मा कुमारी जी वाले, तो वो अपने ही भेष में जैसे आते हैं ना लोग अज्ञानी बन के, वो आया और उसके बाद वो एक महीना के बाद महाराज जी के पास गया। एक महीना के बाद गया इनका शिष्य वापस, और वो माउंट आबू तक भी आया, और मजा आ गया। बाबा के घर में आने के बाद तो बुद्धि पलट ही जाएगी, वो सीधा महाराज जी के पास गया, महाराज जी मुझे जो है छुट्टी दे दीजिए मैं जाने चाहता हूँ। महाराज जी ने कहा अरे इसको क्या हुआ, उस भाई ने एक काम किया था बड़ा अच्छा, वो दो किताब यहां से लेकर गया था ब्रह्मा बाबा की, फर्स्ट और सेकंड जीवनी, महाराज जी को उसने दे दिया था कि आप जरा ब्रह्मा कुमारी के बारे में जानकारी ले लीजिएगा, पूरी जानकारी आपने कहा था ना इसी में ले लीजिएगा। महाराज जी बहुत बुद्धिमान ब्रिलियंट महंत हो, उन्होंने कहा मुकेश जी मैंने पूरी थ्योरी दादा लेखराज की पढ़ी, जो व्यक्ति जितना विरोध है आपका मैं जानता हूं कि ब्रह्मा कुमारियों को पसंद यहां नहीं करते हैं, पूरे अयोध्या के संत महंत क्या बाहर के भी, लेकिन ये मूर्ख हैं, इन्होंने अभी जाना नहीं है पढ़ा नहीं है, मैंने इसको पढ़ा। तो जो व्यक्ति ने अपने जीवन का, मैं चलो इसको कहते हैं कि इनको ब्रह्मा बना के बैठाया है यही बनेंगे फलाओ, तो क्यों नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा जब जो है साईं बाबा हो सकते हैं भगवान, बौद्ध हो सकते हैं भगवान, ये सारे लोग को बना सकते हो। दादा लेखराज जिसने अपने जीवन के सारी कमाई को 18 लाख जो भी थे इनके पास, उन्होंने माताओं बहनों को, वो भी फैमिली को नहीं दिया, उनको सब दे दिया ट्रस्ट बना के, इतना बड़ा समर्पण कौन कर सकता है? एक महान आत्मा ही कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा, फिर कहा मैं आपके साथ यही कह दे रहा हूं सामने, आने वाले कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद ब्रह्मा कुमारी जी के सामने पूरी दुनिया झुक जाएगी। ये महाराज जी के शब्द हैं। एक छोटा सा कोटा शहर का अनुभव, अयोध्या से पहली बार 12 महंत बड़े बड़े लोग आने वाले थे, बिंदु गाध्याचार, जो ऐसे टीका लगाया जाता है, टीका एक यू की टाइप लगता है, जो पूरी वर्ल्ड में उसकी गद्दी अयोध्या में है, बड़ी जगह उसको बोलते हैं, और उसके जो हेड हैं बिंदु गाध्याचार और देवेंद्र प्रसाद आचार्य जी महाराज जी, राजा दशरथ की राजमहल की गद्दी है, उनकी उनकी पूजा होती है। तो वो सब साथ माउंट आबू आना जब शुरू किए, साथ में आए चार गाड़ी लेकर। रास्ते में हम लोग का कोटा रुकना था, कोटा में उर्मिला दीदी है, तो उस वक्त ये जो अभी सेंटर इतना बड़ा बन रहा है तब नहीं था, किराए पे था, हमने सोचा वहां रुकेंगे आज रात में। महाराज जी को लेकर हम लोग पहुंचे वहां, दिन में पहुंचे थे। दीदी सब भाई इकट्ठा हुए, कितने संत वो भी इतने दिग्गज, तो दीदी हमें किनारे लाके कहे, अरे मुकेश भाई कैसे इनको पकड़ लाए, ये हम तो यहाँ कोटा में अवधेशानंद बड़ा महाराज है उसके यहाँ जाती हूँ, 3 साल से अंदर जाने नहीं देता, वहीं गेट से वापस कर देता है रक्षाबंधन पे, आज तक बंधाया ही नहीं अंदर। तो हमने कहा ऐसा भी है? कहा हाँ। तो हमने कहा ठीक है जरा रुको तो बताते हैं अभी। बड़े महाराज जी से हमने कहा, महाराज जी ऐसी ऐसी बात है, यहाँ अवधेशानंद महाराज जी है एक, और हमारे दीदी लोग जाती, वो कभी उन्होंने तो अंदर नहीं आने दिया। तो बड़े महाराज मुस्कुराए, कटीली मुस्कुराहट थी, हम समझ गए कोई रहस्य तो है। कहा मुकेश जी दीदी के पास गाड़ी वाड़ी है? तो हमने कहा हाँ गाड़ी है, मारुति वैन है। तो कह उन्होंने कहा ठीक है, उनसे बोलो कि बैठे गाड़ी पे, तैयार हूँ, चलो हमारे साथ। हमने कहा मतलब? कहा आज के बाद वो सलामी भरेंगे। महाराज जी ने कहा, हमने कहा ऐसा? कहा हाँ। तो उठाए गाड़ी, सब लोग चार गाड़ियां लेकर पहुंचे। अच्छा दीदी को पहले अंदर अंदर तक लाए, लेकिन मेन जगह जहां महाराज जी की गद्दी बैठे थे वहां नहीं लेकर गए। हम गए, सब महंत लोग अंदर गए। जैसे अयोध्या के वो महाराज जी ये लोग पहुंचे हमारे साथ, वो महाराज जी सिंहासन से अपने उठ के, उनको अयोध्या वाले अपने सिंहासन बिठाए, उनका पैर वैर बढ़िया सा दादे। मैं देख रहा, हमने कहा वाह ये तो भाई लीडर है। तो थोड़ी फिर महाराज जी ने कहा, हमें देखा जब महाराज जी बोल तो नहीं रहे, लेकिन पहचान गई यार ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, और मैं तो आने देता ही नहीं हूँ, बोल तो नहीं रहे हैं वो। तो जन बड़े महाराज जी ने कहा कि मुकेश भाई बुलाओ कहाँ है? तो हमने दीदी को बुलाया, अंदर आई, है ना, आइए आइए दीदी। वो महाराज जी बोले, अरे इन बहनों को तुम अपने बोलने लगे, मैंने इनको तो बाहर कभी अंदर आने नहीं दिया, बाहर ही बिठाया है, मैं तो क्षमा चाहूंगा मुकेश जी भाई, अब इनको सबको तो घर की तरह हो गए हैं, और इनको नहीं बुलाऊंगा तो आप तो मुझे अयोध्या नहीं आने दोगे। अरे हमने कहा हम काहे रोकेंगे आपकी अयोध्या है। वो महाराज जी इतने कट्टर, उस महाराज जी ने कभी भी ओम शांति अपने मुंह से निकाल नहीं कहा। आप लोग सृष्टि बताते हो 5000 साल है, तो मतलब कुछ बहुत सारी चीजें उन्होंने सुने थे। कहा क्या आप लोग संस्कृति तोड़ते हो? मैं मुस्कुरा के रह गया। हमने कहा अरे ऐसा ही नहीं, हम वहां चले गए, मैं पहले अयोध्या में आप ही लोग के साथ रहता था, मैं यहाँ भी देखा हूँ वहां भी देखा हूँ, आपने यही देखा है सिर्फ, कभी वहां का भी देखो, समय आएगा। तो समय आया 3 साल बाद, अब वो बहने सब मिल गए, पूरी सेवाएं महाराज जी ने उद्घाटन करना सारा काम शुरू कर दिया। तो उस शिलू दीदी के प्रोग्राम में वो कोटा से महाराज जी आए थे, वो गए वहां पर। आपको बताया उस महाराज जी ने फिर इतना बढ़िया बोला, ब्रह्मा कुमारियों की थ्योरी समझ के, वो धारणाएं जो बाबा कहता है, वो धारणाएं इन लोग को दिखता है, उनको खींचता है, वो लोग स्वयं बोलते हैं इनकी आप लोग के चेहरे पर कितनी चमक होती है, तो वो आपस में बात करते हैं, इनकी धारणाएं बड़ी पक्की है। बड़े महंतों की, सारे अयोध्या के महंतों की भंडारा था, मैं साथ में, मुझे महाराज जी लेकर गए, मैंने सोचा फंस गया, ये तो खिलाएंगे अभी, लेकिन हम कहा तोड़ूंगा तो नहीं, भले ये लोग किनारे हो जाए। लेकिन महाराज इतना समझदार, जो कई बार शामिल हो चुके थे, सब लोग बैठे थे बड़े बड़े दिग्गज, हमसे कहा महाराज, वहीं से बड़े महाराज जी ने कहा मुकेश जी की स्थान और चौकी अलग लगाओ वहां पर, सब देखने लगे। तो हमने कहा नहीं महाराज जी, हम प्रसाद नहीं पाएंगे, मैं फिट हूँ। कहा नहीं नहीं चिंता नहीं करो, सबके बीच में बोल रहे हैं, चिंता नहीं करो, कम से कम सैकड़ों लोग बैठे थे। मुकेश जी मैं नियम जानता हूँ आप लोग का, और नियम किसी का तोड़ना यह अच्छा नहीं है, आपके लिए फल फ्रूट ही जाएगा। अलग बनाया और सब देख रहे थे कोई विशेष है जो बाहर से आ रहे हैं, तो इतना ज्यादा सम्मान उन लोग का और इतना ज्यादा फिर दीदियों का और महाराज ने बहुत सम्मान और ओम शांति का उन्होंने अनुभव भी बताया अपना खुद सारी चीजें। अब मैं अपनी बाड़ी विराम करता हूँ, बहुत सारे अनुभव हैं आप लोग। अच्छा अभी 5 मिनट का टाइम है, ठीक है। तो अच्छा अच्छा अगर इच्छा तो अभी तो और है ही है। विदेश की सेवाएं कैसे हुई महंत महाराज के द्वारा ये मैं बता देता हूँ। महाराज जी को जाना था हमसे, वो बोले कि महाराज जी बड़े महाराज जी कि मुकेश जी मैं थाईलैंड जा रहा हूँ 3 दिन के लिए, हमारा जो है वहां से सम्मानित किया जाएगा, वहां सरकार मुझे सम्मानित करने वाले हैं क्योंकि वहां लक्ष्मी नारायण के बहुत बड़े मंदिर है थाईलैंड में, वहां पर उनका था। तो तुरंत बाबा ने यहां मुझे टच किया, सेवाएं किया जा सकता है थाईलैंड का। तो मैंने उषा दीदी को फोन किया, हमने कहा दीदी ऐसी ऐसी बात है महाराज जी इस डेट में विदेश जा रहे हैं, तो वहां मैं चाहता हूं वहां जो सेंटर है महाराज जी वहां चले जाए, क्योंकि विदेशों में महाराज लोग की बड़ी वो है, बड़ा सम्मान लोग करते हैं जो लोग जानते हैं। दीदी ने फटाफट सेट किया वहां सेंटर पे जो दीदी थी उसके उनके द्वारा, तो हमने महाराज जी से ये कहा कि, और दीदी से हमारी कांटेक्ट वहां भी कराया हमने, वहां की दीदी से कहा दीदी काम करिएगा आपका वहां कहीं लक्ष्मी नारायण मंदिर है, कहा हाँ ये तो हमारे बस ज्यादा दूर नहीं है मुकेश जी, हमने कहा कभी जाते हैं, कहा नहीं वहां तो नहीं है हम लोग का वो, हमने कहा महाराज जी यहां से जा रहे हैं अयोध्या से बड़े महाराज जी चीफ गेस्ट बन के, और वहां की सरकार उनको सम्मानित करेगी, आप लोग महाराज जी को सेंटर पर ले जाना, मैंने बता दिया है वो जाएंगे और वहां के लोगों को इकट्ठा करना, ये स्पीच बाबा के बारे में ही बोलेंगे और कहीं नहीं बोलेंगे ये। तो कहा अच्छा, तो हमने कहा आप लोग मंदिर में भी जाएंगे अब अपना कार्यक्रम करने के लिए आपको चांस लगेगा। महाराज जी से हमने कहा महाराज जी आपको वहां पर बोलने का, बहने हमारे जाएंगी उनको चांस देना है लक्ष्मी नारायण मंदिर पे, और आप स्वयं जैसे जाएंगे आप डायरेक्ट बोलना अरे आओ स्वागत है ओम शांति ये से बोलना जरूर ताकि लोग जान जाएं। तो कहा ठीक है वो तो मैं बोलूंगा ही। महाराज जी गए और इतना अच्छा कार्यक्रम रहा, सेंटर पर गए वहां पर भोजन किया, ये पूरी टीम थी इनकी, और वहां से फिर हमें कॉल कर रहे हैं सभी के सामने और सबसे बात करा रहे हैं कि अरे देखो यहाँ बाबा का झंडा लहरा दिया मुकेश भाई पूरा लक्ष्मण लक्ष्मी नारायण मंदिर में बहने, और महाराज ने वैसे ही बुलाया सबको। तो दीदी बहुत खुश थी, कहा मुकेश भाई यहाँ हम लोग को चांस नहीं मिलता था, ये बड़ा वो है। हमने कहा वहां का रास्ता खुल गया, तो वहां के जो संत था उनसे फिर परिचय करवाया गया, महाराज जी ने कराए। ऐसे ही अयोध्या के महंत जी ने झांसी कोटा और उज्जैन और क्या नाम है उड़ीसा, सारे संतों के लोग हमसे जोड़ते रहे, और इस वक्त वृंदावन मथुरा के जो कृष्ण जन्मभूमि के इस वक्त अध्यक्ष जी हैं देवमुरारी महाराज बापू जी, वो इतना अच्छा है बाबा के उसमें उनका अनुभव, और उनको अभी मैंने बुलाया था उनके साथ उस महाराज को बुलाया जो कहे थे आत्मदाह करने के लिए। तो मैंने देखा फोटो में कि अरे देवमुरारी के सब लॉबी में है सारे लोग, बद्रीनाथ केदारनाथ के सारे संत महंत हैं। महाराज जी से मैंने कहा ये भारत के जितने संत महंत हैं महाराज जी मैंने सबको देख लिया, आपके ही नीचे हैं सब, आपने जोड़ रखा है, इन सबसे मुझे मिलना है और सबको ले चलना है माउंट आबू एक बार दर्शन कराने। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुकेश भाई आप अपनी गाड़ी निकालो और 20 दिन मेरे साथ भ्रमण करो, हर जगह ले चलूंगा और सबको ले आऊंगा जहां बोल दूंगा। हमने कहा अच्छा पहला काम ये करना है, एक परमहंस जी महाराज जी जगत गुरु जी हैं वो आपके साथ, मैंने देखा मैं चाहता हूं आश्रम पर उनको इमीडिएटली आने के लिए। तो कहा ठीक है, हमने कहा अयोध्या कब आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा बस एक हफ्ते में आ रहे हैं, हमने कहा आपका कार्यक्रम मैंने रख दिया आ जाइए। तो जैसे वो आए और परमहंस महाराज तैयार हो गए, इस डेंजर पर्सनालिटी आपको तो मैं भेज दूंगा सुन लीजिए, एक बार होश उड़ जाएंगे उसके। कई लोगों ने हमसे कहा मुकेश इनको पकड़ लो तो मैं जान जाऊं, तो हमने कहा ये आएंगे। तो महाराज तैयार हो गए, वो आए आश्रम पर, थोड़ा रास्ता गड़बड़ था, तुरंत गुस्सा ही हो कहा कौन विधायक जो है आपके एरिया का है आश्रम का, रास्ता नहीं बनाया आश्रम का भी। हमने कहा बहुत सही बाबा ने भेज दिया, ये तो अच्छा था रास्ता गड़बड़ था। हमने कहा नहीं विधायक जी ने कहा बताओ उसको फिर बताता हूँ अभी। तो हमने कहा नहीं महाराज जी हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा, वो रास्ते चलते अभी आश्रम पहुंचे नहीं थे, आश्रम पहुंचे, हमने कहा आपका बाइट भी लेना है महाराज जी। कहा मुकेश जी हमारे मुंह से मुसलमानों के लिए जहर ही निकलेगा। हमने कहा मैं मुसलमान के बारे में पूछूंगा ही नहीं आपसे ना। कहा फिर भी निकलेगा। अब मैं सुन चुका था उनका टीवी पे सब चैनलों पे आया करता है बिल्कुल कट्टर वो, तो हमने कहा नहीं ऐसा नहीं है, आप जहां आए हैं ये शांति का प्रतीक है यहां पर, और मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता, आप तो संत हैं बोलना ठीक है, आपका उनके प्रति नफरत है क्योंकि बहुत हाथाहाथ किया है ना भारत को, इसलिए तो ये अक्सर लोगों के अंदर है, लेकिन कहने का तरीका थोड़ा अगर चेंज हो जाए तो बहुत अच्छा महाराज जी। तो कहा ठीक है मैं कोशिश करूंगा। तो हमने कहा ब्रह्मा कुमारी के बारे में आपके क्या विचार है, महाराज जी ने पहले से बोले थे कि ये ब्रह्मा कुमारी के बारे में उल्टे सीधा बोलेगा। तो मैंने कहा बाबा के कमरे में बिठाया, टोली खिलाया, सब कुछ जी। उन्होंने इतना अच्छा दिया संदेश और ये भी कहा कि जो अयोध्या में राम राज आएगा निश्चित रूप से ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा ही आएगा। अयोध्या जो बन रहा है बिना ब्रह्मा कुमारियों की जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, इसके बगैर तो राम राज हो ही नहीं सकता है। धारणाएं वो सारी चीजें वो भी क्लिप मेरे पास है, तो वो सब भी जुड़ गए। और इस बार जैसे धर्म सम्मेलन होगा अयोध्या से और अनेक जगह से बहुत बड़े बड़े संत यहाँ अयोध्या आने वाले हैं, और आप लोग का भी स्वागत है। अयोध्या आइए एक बार देखिए, त्रेता में त्रेता सफल होगा आप ही लोग की वजह से, फिर मथुरा का लाइन लग जाएगा, यानी सतयुग का भी आ जाएगा। ठीक है, अपनी बाड़ी को मैं विराम देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, ओम शांति।